ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में श्री मोदी का रस्मी तौर पर स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ बातचीत करेंगे और वहां के राष्ट्रपति आन्द्रेज डूडा से भेंट करेंगे। श्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों, व्यापार प्रतिनिधियों और पोलैंड में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के साथ भी बातचीत करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से निर्देश मिलने के बाद प्रशासनिक सेवा में लेटरल एंट्री संबंधी विज्ञापन रद्द कर दिया है। इससे पहले कल सरकार ने आयोग से प्रशासनिक सेवा में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द करने को कहा था। कुछ दिन पहले यूपीएससी ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिव, निदेशक और उपसचिवों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसका विपक्षी दलों ने विरोध किया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष प्रीति सुदन को पत्र लिखकर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि लेटरल एंट्री की प्रक्रिया संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों, विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। इस मुद्दे पर सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लेटरल एंट्री के निर्णय को आरक्षण के सिद्धांतों से जोड़ने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्धता व्यक्त होती है। भारत ने जापान से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी साझा करने में आने वाली नियामक बाधाएं दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में संपन्न हुई 2+2 वार्ता में भारत और जापान ने सुरक्षा सहयोग का नया ढांचा तैयार करने पर सहमति व्यक्त की, ताकि समग्र कार्यनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाया जा सके। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल थे। जापान की ओर से वहां के विदेश मंत्री योको कामिकावा और रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू ने वार्ता में हिस्सा लिया। डॉ जयशंकर ने अपने बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने प्रौद्योगिकी अनुसंधान और औद्योगिक सहयोग के लिए नए आयाम उजागर करने पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने घोषणा की कि भारत जापान के फुकुओका शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा ने कहा कि भारत और जापान ने अपना यह संकल्प दोहराया है कि वे बलपूर्वक यथास्थिति को बदलने के एकतरफा प्रयासों का विरोध करेंगे और कानून पर आधारित मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेंगे। दो दिवसीय भारत यूरोपीय संघ ट्रैक सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। भारत और यूरोपीय संघ ऑनलाइन कट्टरपंथ से उभरते खतरों पर चर्चा करने के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन में आतंकवाद के ऑनलाइन खतरों से मिलकर निपटने के रास्ते तलाशे जाएंगे। ये सम्मेलन डिजिटल आतंक के विरूद्व लड़ाई में अग्रणी दक्षिण एशिया और यूरोप के प्रवर्तन अधिकारियों, शिक्षाविद, नीति निर्माता और विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य यूरोपीय संघ की हिंद प्रशांत रणनीति के साथ क्षेत्र में आतंकवाद निरोधक संवाद और साझेदारी को बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी नेता राम माधव और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 18 और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीन चरणों में मतदान होगा। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर में युवा और महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के कारण नए मतदाताओं की संख्या में 93,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। केंद्र शासित प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़कर 209 हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में हुए इस विशेष संशोधन में कुल 93,284 मतदाता जोड़े गए हैं। मौसम विभाग ने केरल के 6 जिलों पत्तनमतिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, मल्लापुरम, कोझिकोड और वायनाड में अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल और लक्षद्वीप के तटों पर 55 किलोमीटर की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इस बीच पत्तनमतिट्टा के जिलाधिकारियों ने कहा है कि निचले क्षेत्रों में तेज बारिश के बाद बढ़े जलस्तर को संतुलित करने के लिए मुझियार बांध और मनियार बैराज से पानी छोड़े जाने की संभावना है। ककड़ातार और पंपा के तटों पर रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप के 9वें संस्करण को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात स्थानांतरित कर दिया है, परंतु बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस आयोजन का आधिकारिक मेजबान बना रहेगा। टूर्नामेंट 30 से 20 अक्टूबर के बीच दुबई और शारजा में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।